జయ రాధా మాధవ కుంజ నిహారి జయ రాధా మాధవ కుంజ నిహారి జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి యశోదానందన బ్రజ జన రంజన యశోదానందన బ్రజ జన రంజన యమునా తీరా బన చారి తీరా బన చారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారి జయ రాధా మాధవ కుంజ జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివర ధారి యశోదానందన బ్రజ జన రంజన యశోదానందన బ్రజ జన రంజన యమునా తీరా బన చారి యమునా తీరా బన చారి జయ రాధా మాధవ కుంజ నిహారి జయ రాధా మాధవ కుంజ నిహారి పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య స్తోత్రశాస్త్రి శ్రీమధేష్టవాంగ్రీస్ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ నేత్రలీలాన్ ఫౌండర్ ఆచార్య శివది హోర్వర్ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జయ నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్ కీ జయ ప్రేమ్ సికహో శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీ వాసుది గౌర భక్తి వృంద కీ జయ శ్రీ శ్రీ రాధా పార్థ సారథీ లలిత విశాఖ గోప గోపీనాథ్ శ్యామ కుండ రాధా కుండ గిరి గోవర్ధన్ కీ జయ శ్రీ శ్రీ గౌణదాయ భగవాన్ కీ జయ శ్రీ శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ హనుమాన్ కీ జయ సమవేత భక్త వృంద కీ జయ అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద కీ జయ ఇస్కాన్ వర్తమానాచార్య వృంద కీ జయ శ్రీ పాదనింబార్కాచార్య ఆవిర్భావ తిథి మహామహోత్సవ కీ జయ గౌర ప్రేమానందే ఆల్ గ్లోరీస్ టు సింబిల్డు డేస్ ఆల్ గ్లోరీస్ to Simran Devotees, all glories to Simran Devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। आज श्रीपाद निंबार्काचार्य का आविर्भाव है, तो उनका जो जीवन चरित्र है ये मैं पढ़ के सुना रहा हूँ पुस्तक समाधियों से। इनका जो जीवन चरित्र है वो पूरा पूरा तो प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, फिर भी कुछ अधिकारी जो है स्वीकार करते हैं कि निंबार्काचार्य ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया था भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार से भी 300 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ कब? 1486 में, तो उससे भी 300 साल पहले, मतलब 1186 के आसपास। नवदीप धाम महात्म्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि निंबार्काचार्य ने पहले शिव जी की पूजा की थी बिल्व पक्ष में रुद्रद्वीप, नवद्वीप के अंदर रुद्रद्वीप है, वहाँ बिल्व पक्ष नाम का स्थान है, वहाँ शिव जी की आराधना की। शिव जी प्रकट हुए निंबार्क के सामने और उनको आदेश दिया कि वो दीक्षा ग्रहण करें, जिनसे चार कुमारों से, जो कि वहीं पास में ही ध्यान में बैठे हुए थे चार कुमार। निंबार्क ने राधा कृष्ण मंत्र प्राप्त किया उन चार कुमारों से, इसलिए कुमार संप्रदाय कहलाता है ना, कुमार संप्रदाय, निंबार्क संप्रदाय है ना। और नवद्वीप में ही फिर रहते रहे। सनत कुमार संहिता के अनुसार वे जो है राधा और कृष्ण की पूजा करते थे बहुत प्रेम से, और जल्दी ही राधा कृष्ण निंबार्क के सामने प्रकट हो गए, और ये दोनों राधा कृष्ण उनके सामने ही सामने एक एक हो गए और क्या बन गए? गौरांग महाप्रभु। 300 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, 300 साल पहले निंबार्क उन्होंने दर्शन कराया, अपना दर्शन कराया राधा कृष्ण, और फिर एक हो गए और गौरांग महाप्रभु। भगवान गौरांग ने कहा, निंबार्क भविष्य में मैं अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू करूंगा और मैं स्वयं प्रचार करूंगा पूर्ण दिव्य सिद्धांत का, जिसका नाम होगा क्या? अचिंत भेद, अचिंत भेद भेद तत्व। और मध्व संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय और निंबार्क संप्रदाय, इन चारों से मैं दो दो सिद्धांतों को लूंगा अपने अचिंत भेदाभेद तत्व का जो सिद्धांत है उसमें दो दो सिद्धांत चारों वैष्णव संप्रदाय से लूंगा। तो तुम्हारे संप्रदाय से मैं दो महत्वपूर्ण सिद्धांत लूंगा। पहला सिद्धांत क्या है? कि आवश्यकता श्रीमती राधा रानी की शरण लेने की। तुम्हारे संप्रदाय में जो सिद्धांत है, तो एक सिद्धांत तो मैं ही लूंगा, श्रीमती राधा रानी की शरण लेने की आवश्यकता। और दूसरा है ब्रज गोपियों का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, ये कितना ऊंचा है, ये सिद्धांत भी मैं लूंगा तुमसे। भगवान गौरांग निंबार्क को इस प्रकार से बतला करके अंतर्धान हो गए, और निंबार्क जो है प्रेम के अश्रु बहाते हुए नवद्वीप से चले गए और अपना प्रचार कार्य शुरू किया। चैतन्य लीला में निंबार्काचार्य प्रकट हुए थे किस रूप में? केशव कश्मीरी के रूप में, जो चैतन्य महाप्रभु से हारे। तो 300 साल पहले जो निंबार्काचार्य थे, तो फिर चैतन्य महाप्रभु लीला में केशव कश्मीरी के रूप में प्रकट हुए और कृष्ण प्रेम प्राप्त किया सीधे किससे? निमाई पंडित के द्वारा। उस समय निमाई पंडित के रूप में चैतन्य महाप्रभु थे। और बड़े अद्भुत समानताएं हैं गौड़ीय संप्रदाय में और निंबार्क संप्रदाय में। निंबार्क के जो न्यायी हैं, तो वे 6 प्रकार की शरणागति स्वीकार करते हैं और 9 भक्ति का अभ्यास करते हैं और 10 मूल पर विश्वास करते हैं, मतलब जो गौड़ीय सिद्धांत के 10 मुख्य बातें हैं उनको। और वे भी राधा कृष्ण की पूजा करते हैं वृंदावन में, वे पूजा करते हैं श्रीमती राधा रानी की सर्वोच्च भक्त के रूप में और गोपियों के प्रेम को स्वीकार करते हैं, कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम सर्वोच्च है और अपनी भजन की जो माला है तो अपने जप माला पर वो महामंत्र का कीर्तन करते हैं। 16 नाम का ही महामंत्र है, लेकिन किस प्रकार से, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, ये 16 नाम का मंत्र है। वृंदावन में गोवर्धन से लगभग 1 मील की दूरी पर एक नीम गांव नाम का स्थान है, जिसको निम्बार्काचार्य के कारण ही रखा गया है, जो वहाँ बचपन से रहे और बाद में भजन भी वहीं करते रहे। कितने लोग जानते हैं नीम गांव, गोवर्धन के पास ही नीम गांव? नहीं जानते, नीम गांव है वहाँ। वृंदावन में जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं तो उनके जो स्थल हैं कुछ है, वो निम्बार्क संप्रदाय के ही अनुयायी उनका पालन करते हैं, और मथुरा वृंदावन में जो है बहुत से भक्त हैं जो निम्बार्क संप्रदाय के हैं। और श्री जी मंदिर जो लोई बाजार के पास में वृंदावन में है, तो वो जो है निम्बार्क संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। श्री निम्बार्काचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 पांडवों का सामयिक प्रस्थान, श्लोक संख्या 39। मेरे पीछे बोलिए, मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिम ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम अग्निनपि बधीश्वरः मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम अग्निनपि बधीश्वरः मथुरायां तथा वज्रम शूरसेन पतिं ततः प्राजापत्यां निरूप्येष्टिम अग्निन अपिबन् ईश्वरः। शब्दार्थ बोलिए, मथुरायां मथुरा में, तथा भी वज्रम वज्र को, शूरसेन पतिम शूरसेन का राजा, ततः तत्पश्चात प्राजापत्याम प्रजापति यज्ञ निरूप्य संपन्न करके, इष्टिम लक्ष्य अग्निन अग्नि को, अपिबत अपने में स्थापित किया, ईश्वर समर्थ अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, तब उन्होंने अनिरुद्ध यानी भगवान कृष्ण के पौत्र के पुत्र वज्र को मथुरा में शूरसेन का राजा बना दिया। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ किया और गृहस्थ जीवन त्यागने के लिए अपने भीतर अग्नि स्थापित की। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। महाराज युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठाकर तथा भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। वर्णाश्रम धर्म गुण और कार्य की दृष्टि से वास्तविक मानव जीवन का शुभारंभ है और महाराज युधिष्ठिर तो इस वर्णाश्रम धर्म के रक्षक थे, अतः उन्होंने शासन का भार प्रशिक्षित राजकुमार महाराज परीक्षित को सौंप दिया और स्वयं सन्यासी बन गए। वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति मानव जीवन को चार वृत्ति विभागों तथा चार आश्रमों में विभाजित करती है। जीवन के चार आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। ये चारों सबों के द्वारा पालनीय हैं, चाहे उनका वृत्ति परक विभाग कुछ भी हो। आधुनिक राजनेता सक्रिय जीवन से विरक्त नहीं होना चाहिए, भले ही वे कितने ही बूढ़े क्यों न हो जाएं, लेकिन महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे, अतः वे स्वेच्छा से प्रशासनिक जीवन से विरक्त हो गए जिससे अगले जीवन की तैयारी कर सकें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन की ऐसी व्यवस्था करे कि जीवन की अंतिम व्यवस्था के कम से कम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए जा सकें, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। अब यहीं पर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। ध्रुवा जी क्या बता रहे हैं कि अपने जीवन कम से कम 15-20 वर्ष पूरी तरह भगवान की सेवा में लगाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए अपने जीवन की। और युधिष्ठिर महाराज ने जो है ना तुरंत क्या किया, छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि समय लगाया हो, बिल्कुल समय नहीं लगाया। जैसे उनको पता चला कि भगवान कृष्ण छोड़ के चले गए हैं तो इस कलयुग में खतरा समझ करके, कलयुग में बहुत खतरा है ये समझ करके परीक्षित महाराज को राजा बनाया। कहाँ का? हाँ, पिछले श्लोक में था, हस्तिनापुर का राजा बनाया। और वज्रनाभ जो कृष्ण के पुत्र के पुत्र के पुत्र हैं, है ना, कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र कौन? अनिरुद्ध है। और अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, है ना, प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। ये सब कहाँ है? वो तो यदुवंशों के जो संहार हुआ उसमें वो चले गए परमधाम में, है कि नहीं? तो वज्रनाभ जो है ना यदुवंश में केवल बचे हैं, और जो है कुरुवंश में परीक्षित बचे हैं। जो युद्ध हुआ महाभारत का उसमें कुरुवंश नष्ट हो गया, केवल परीक्षित वंश के बीच बचे हैं, और यदुवंश जो है ना पूरा नष्ट हो गया मौसल लीला में, और उसमें केवल बचे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ को राजा बनाया मथुरा का। द्वारका क्यों नहीं राजा बनाया वज्रनाभ को? द्वारका डूब गई जब भगवान कृष्ण छोड़ दिया द्वारका को, तो 7 दिनों के बाद समुद्र ने डुबा दिया द्वारका को, और मथुरा जो है ना खाली पड़ा हुआ था। मथुरा जो है स्थान खाली पड़ा था क्योंकि जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया था, तो मथुरा को खाली छोड़ करके सब जो है ना द्वारका वासियों को भगवान मतलब मथुरा वासियों को भगवान द्वारका में ले आए, तो मथुरा खाली पड़ी थी, तो वहां का राजा वज्रनाभ को बनाया। और युधिष्ठिर महाराज संन्यास लेते हैं, संन्यास या वानप्रस्थ कह सकते हैं क्योंकि द्रौपदी के साथ जा रहे हैं, है ना। तो क्षत्रिय राजा जो है ना मतलब वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं, गृहस्थ से वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं। तो द्रौपदी के साथ जाते हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में युधिष्ठिर महाराज गए। प्रभुपाद जी संन्यास समझा रहे हैं संन्यास, क्योंकि शुरू में वानप्रस्थ और संन्यास में ज्यादा अंतर पता नहीं चलता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये मुख्य चीज यही है कि भगवान की सेवा में लगाया जाए पूरा समय, जीवन का कुछ हिस्सा ऐसा हो जिसमें पूरा पूरा समय भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये सचमुच नादानी है कि जीवन का सारा समय भौतिक भोग तथा सकाम कर्मों में लगाया जाए, क्योंकि जब तक मन भौतिक भोग के लिए सकाम कर्मों में लगा रहता है तब तक बद्ध जीवन या भव बंधन से बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वैसे पांडवों के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, वो उनका गृहस्थ जीवन था और ये वानप्रस्थ जीवन है, कोई अंतर नहीं है, उनके लिए भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन तो भी शिक्षा देने के लिए चूंकि वो नेता हैं, मनुष्य समाज के नेता हैं, राजा श्रेष्ठ पुरुष, तो वो हमें शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किसी भी व्यक्ति को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने की, परम कार्य की अर्थात भगवत धाम जाने की उपेक्षा करने की आत्मघाती नीति नहीं अपनानी चाहिए। ये नीति कितनी खतरनाक है, आत्मघाती नीति है ना, आत्महत्या की नीति है। क्या अगर आप जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, पूरा जीवन आप लगाना चाहते हैं किसमें, समाज सेवा, देश सेवा के नाम पर, देश सेवा समाज सेवा के नाम पर करना करना क्या चाहते हैं, अपनी दुर्गति करना चाहते हैं। देश सेवा समाज सेवा के चक्कर में कोई व्यक्ति कुत्ता बनता है अगले जन्म में, कोई व्यक्ति चूहा बनता है, कोई व्यक्ति बिल्ली बनता है ना। तो ये बहुत खतरनाक सिद्धांत है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम सुनेंगे बजनाथ का जो चरित्र है, क्योंकि यहाँ पर सूद गोस्वामी बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने बजनाथ को मथुरा का राजा बना दिया है ना। तो बजनाथ और परीक्षित, कुरुवंश के परीक्षित महाराज हस्तिनापुर में राजा हैं, और युधवंश के बजनाथ जो है मथुरा के राजा हैं। तो ये दो राजा हैं जो दो पवित्र वंश, कुरुवंश के और यदुवंश के, ये दो राजा बचे हैं। तो अब हम सुनेंगे परीक्षित और बजनाथ के बीच में कैसे संबंध थे, कैसा व्यवहार हुआ और क्या घटनाएं घटी, उनको हम सुनेंगे। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बजनाथ और परीक्षित का जो है ना पारिवारिक संबंध किस प्रकार से हुआ, मतलब क्या पारिवारिक संबंध है, कोई बता सकता है? बजनाथ परीक्षित के पुत्र के समान है ना। तो परीक्षित महाराज जो है पांडवों के पौत्र हैं, है ना। तो पुत्र के पुत्र मतलब दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी समझो, परीक्षित महाराज तीसरी पीढ़ी में है और बजनाथ चौथी पीढ़ी में है कि नहीं। तो परीक्षित महाराज जो है बजनाथ के पिता के समान लगे ना। तो आप हम सुनेंगे स्कंद पुराण में जो है लिखा है, जो ऋषि लोग हैं सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? वज्रम श्री माथुरे देशे तपोत्रम हस्तिनापुरे अभिशिच्य गते रागी तौ कथम किम च चक्रतुहुम। बजनाथ को मथुरा मंडल का शासक बना करके और हस्तिनापुर का शासक परीक्षित महाराज को बना करके जब वे चले गए, पांडव लोग चले गए, तो इन दोनों राजाओं ने क्या किया? कौन पूछ रहा है? नैमिषारण्य के ऋषि पूछ रहे हैं, किससे? सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल इस कथा के प्रसंग से मिल रहा है ना ये, क्योंकि यहां पर तो पांडवों का प्रस्थान बताया जा रहा है कि पांडव लोग चले गए है ना, पांडवों की बात हो रही है, और यहां पर वो ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि इन दोनों राजाओं ने क्या किया है ना। तो इसलिए आज के श्लोक पर हम इस घटना को सुनेंगे। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, महापथम गते रागी परीक्षित पृथ्वी पति जगा में मथुराम विप्रा बजनाभ दिदृक्षय। जब महापथ में प्रयाण कर गए कौन, पांडव, पांचों पांडव और द्रौपदी है, तो महाराज परीक्षित जो है ना पूरी पृथ्वी के जो राजा हैं वो कहां जाते हैं, मथुरा में जाते हैं बजनाभ का दर्शन करने के लिए। बजनाभ के प्रति बहुत श्रद्धा है परीक्षित महाराज की। पितृव्यम आगतम ज्ञात्वा वज्रा प्रेम परिमलुतः अभिगम्य अभिवाद्यात है निनाये निज मंदिरम। तो अपने चाचा को आया हुआ जान करके, बजनाभ प्रेम से भर करके और उनका अभिवादन करके अपने मंदिर में लाए, यानी अपने महल में लाए। परिस्वज्य सतम वीरा कृष्ण के गत मानसा रोहिण्याद्या हरेर पत्नी भवंदा ये तना गत। अब महाराज परीक्षित भी जो है ना कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, तो उनका आलिंगन किया बैजनाथ का, और फिर भगवान की पत्नियां हैं उनके महल में आए, भगवान की पत्नियां रहती वहां मथुरा में। ताभि सम्मानितोत्यरथम परीक्षन पृथ्वी पते विश्रांता सुगमासीन वज्रनाभमवाच। तो कृष्ण की पत्नियों ने भी सम्मान किया परीक्षित महाराज का, और विश्राम करके और सुखपूर्वक बैठ करके वज्रनाभ से बोले, कौन? परीक्षित महाराज बोले। परीक्षित ने क्या कहा आप सुनिए ध्यान से, परीक्षित क्या कहते हैं वज्रनाभ से। तात तुम पृथ्वीर्नूनम अस्मत् पित्रे पितामहां उद्धृता भूरि दुखौघां अहम चा परिरक्षितः। परीक्षित कहते हैं कि हे तात, तुम्हारे जो पिता पितामह हैं उन्होंने जो है हमारे पिता पितामहों की रक्षा की है और बड़े बड़े दुखों से बचाया है। मतलब भगवान कृष्ण ने हमारे पितामहों को बड़े बड़े दुखों से बचाया है, पांडवों को। न पारयाम्य हम तात साधु कृत्योपकार काम स्वामता प्रार्थयाम्यंग सुखम राज्येनु युज्यताम। तो जितने उपकार किए हैं भगवान कृष्ण ने हमारे पितामहों के ऊपर, उनका तो हम कभी पार नहीं पा सकते हैं, लेकिन मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अब सुखपूर्वक आप राज्य का उपभोग करो। मैं आपकी हर तरह की सेवा करने के लिए तैयार हूं, और तुम क्या करो, सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करो। कौश से न्यादिजा चिंता तथारिदम तथारिदम मनादिजा मनागपी न कार्याते सुसेव्या किंतु मातरम। कोष की चिंता नहीं करना, कोष मतलब धन संपत्ति की चिंता नहीं करना, जितनी चाहिए मैं दूंगा। सेना की चिंता नहीं करना, जितनी चाहिए मैं दूंगा ना? और शत्रुओं की चिंता नहीं करना, शत्रुओं से मैं निपटूंगा। केवल आपको माताओं की जरूर सेवा करनी है, कौन? जो कृष्ण की पत्नियां हैं इनकी सेवा करनी है। निवेद्यमयी कर्तव्यम सर्वाधि परिवर्जितम श्रुत्वे तं परम प्रीतो वज्रस्तम प्रत्युवाच। तो ये सुनकर के वज्रनाभ ने परीक्षित महाराज से कहा, राजनुचित में तत्ते यदस्मासो प्रमादसे सत्पित्रोपकृतश्चाहं धनुर्विद्या प्रदानितः। तो वज्रनाभ कहते हैं कि महाराज, ये आपके लिए तो उचित ही है कि आप मुझसे ऐसा कह रहे हैं, आपके ऐसे गुण हैं, लेकिन आपके पिता के द्वारा मेरे ऊपर बड़ा उपकार हुआ है, तो मुझे धनुर्विद्या प्राप्त हुई है, तो मुझे कोई चिंता नहीं शत्रुओं की। आपके पिता मतलब वज्रनाभ के पिता कौन? अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध जी ने मुझे जो धनुर्विद्या दी है इससे मुझे शत्रुओं की चिंता नहीं है। तस्मा नल्यापि मे चिंता छात्रम ऋणम उपेयुषा किंते का परमा चिंता तत्र किंचिन विचार्यताम। इसलिए जरा भी चिंता नहीं मुझे शत्रुओं की, लेकिन एक चिंता जरूर है, इस पर जरूर आप विचार करो। मात्रे तो भी शक्तोपि स्थितो हम निर्जने वने कुगता वे प्रजा तत्याम यत्र राज्यम प्ररोचते। मथुरा मंडल में मेरा अभिषेक हुआ है राजा के रूप में, परंतु प्रजा कहाँ गई है? कोई प्रजा नहीं दिखाई दे रही यहाँ पर। जैसे कि राज्य में रुचि पैदा हो तो कुछ है ही नहीं। मैं राजा बना हूं लेकिन कहाँ प्रजा है? प्रजा है ही नहीं कुछ। इत्युक्तो विष्णुरातस्तु नंदादीनां पुरोहितं सांडिल्यम आजुहावासु वज्र संदेहनोत्तये। तो जब परीक्षित महाराज को ऐसा कहा वज्रनाभ ने, तो परीक्षित महाराज क्या करते हैं, नंद महाराज के जो पुरोहित हैं सांडिल्य ऋषि, उनको लेके आए वज्रनाभ से मिलाया, वज्रनाभ के संदेह को दूर करने के लिए सांडिल्य मुनि को लाए परीक्षित महाराज। सांडिल्य मुनि कौन है? यदुवंश के पुरोहित गर्गाचार्य हैं, और गोप वंश के पुरोहित कौन है? सांडिल्य मुनि। अथोड़ जम्य आया तुम सांडिल्या समुपांगताम पूजितो वज्रनाभेन यशसादासनोत्तमे। तो अपनी कुटिया को त्याग करके सांडिल्य मुनि आए और वज्रनाभ ने उनकी पूजा की और उनको उत्तम आसन पर बिठाया। उपोद्घातम विष्णुरातस चकारासु ततस्ततो वाचे परम प्रीतस्ताव भव परिशांतुयम्। अब वज्रनाभ उनसे जब प्रश्न करते हैं तो सांडिल्य मुनि ने उनको सांत्वना देते हुए कहा। सांडिल्य मुनि क्या कहते हैं, श्रृणतम दत्त चित्तौमी रहस्यम ब्रज भूमिजम ब्रजनम व्याप्तेत्युक्त्याम व्यापनान ब्रज उच्यते। सांडिल्य मुनि बताते हैं कि तुम सुनो बहुत ध्यान पूर्वक ब्रज भूमि का रहस्य। ब्रजन का मतलब होता है व्याप्ति, सर्वत्र व्यापक है इसलिए इसको ब्रज कहते हैं। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्ययम्। जो गुणातीत है, परम ब्रह्म है, व्यापक है, उसको ब्रज कहा जाता है। तस्मिन् नन्दात्मजः कृष्णः सदानन्दाङ्ग विग्रहम् आत्मा रामाश्चापि कामः प्रेमाक्तैरनुभूयते। और उस ब्रज में नंद के पुत्र कृष्ण जो है निवास करते हैं और आत्मा राम कहलाते हैं और आप्य काम कहलाते हैं। कृष्ण को आत्मा राम कहा जाता है और आप्य काम कहा जाता है। आत्मा राम क्यों कहा जाता है, आत्मा तुराधिकातस्य तयैव रमणा दशौ आत्मा राम तया प्राज्ञ प्रवचते गूढ़ वेदी। उनकी आत्मा कौन है, राधिका, उसमें ही रमण करते हैं इसलिए उनको आत्मा राम कहा जाता है। ठीक है, और आप काम क्यों कहा जाता है, कामास्तु वांछितांस्तस्य गावो गोपांश्च गोपिकां नित्यां सर्वे विहाराद्या आप काम सतस्वयम्। उनकी काम, उनकी कामना क्या है, गौएं, गोपियां और गोप, गोपकण इनके साथ सदा विहार करते हैं इसलिए इनको आप काम कहा जाता है कृष्ण को। तो इस तरह से उन्होंने काफी बातें बताई हैं और फिर ये बताया कि चूंकि उन्होंने अपनी लीला भी समेट ली है इसी सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में अब वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है, तस्मा चिंता नते कार्या वज्रनाभे मदांगयम वास यात्रे बहुन ग्रामान संसिंदिते भविष्यति। तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, मेरी आज्ञा से तुम यहां पर बहुत से ग्रामों को बसाओ। समझे, क्या करो, बहुत से गांव बसाओ यहां पर मेरी आज्ञा से। कृष्ण लीलानुसारेण कृत्वा नामानि सर्वतां त्वया वासयता ग्रामान् संसेव्या भूरियं पराम्। कृष्ण की लीला के अनुसार यहां पर स्थानों के नाम रखो और इस भूमि का सेवन करो। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायां महावने नंदिग्रामे बृहत्तानं कार्याराजस्थिति स्वयं। अपने राज्य का जो कार्य है वो स्थान कौन सा होना चाहिए, गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, नंदग्राम और बृहत्ताना मतलब बरसाना। नद्यद्री द्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवतस्तव राज्य प्रजा संपन्ना तुम च प्रीतो भविष्यति। और जो नदियां हैं और पर्वत हैं और कुंड आदि हैं, कुंज हैं, इन सब का अच्छी प्रकार से तुम सेवन करो और इस राज्य में जो प्रजा है वो खूब संपन्न होगी और तुमको भी बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी ऐसा करोगे तुम। सच्चिदानंद भोरेशा त्वया सेव्या प्रयत्नतः तब कृष्ण स्थलान्यत्र स्फुरन्तु मदनुग्रहाम्। तो ये भूमि सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद भूमि है ये, तो प्रयत्न पूर्वक तुम इसका सेवन करो। और कृष्ण की जो स्थलियां हैं, लीला स्थलियां हैं, वो कैसे पता चलेंगी, तो सांडिल्य मुनि कहते हैं कि मेरी कृपा से तुमको स्फुरित होंगी कि कौन से स्थान में कृष्ण की कौन सी लीलाएं हुई थी, उस प्रकार से तुम कृष्ण की लीला के अनुसार उन स्थानों का नाम रखो। वज्रसंसे वनानस्य उद्धवस्त्वां मिलिष्यति ततो रहस्यमे तस्मान् प्रार्थयितुं समात्रिकः। इस प्रकार से जो ना जब तुम सेवा करोगे इस ब्रज भूमि की तो एक दिन तुमको उद्धव जी मिलेंगे और वो तुमको रहस्य प्रदान करेंगे इस भूमि का, और माताओं के साथ में तुम कृष्ण की लीला में प्रवेश प्राप्त करोगे। माताएं मतलब कौन? कृष्ण की पत्नियां। एवं मुक्त्वा तु सान्निल्यं गदा कृष्णं मनुस्मरन् विष्णुरातोऽथ वज्रश्च परां प्रीतिम् अवापतुः। ऐसा क्या करके सांडिल्य मुनि चले गए कृष्ण का स्मरण करते हुए, और विष्णुनाथ को और वज्रनाथ को बहुत प्रसन्नता हुई। अब ऋषि लोग पूछते हैं कि जब सांडिल्य मुनि चले गए अपने आश्रम में तो इन दोनों राजाओं ने अब क्या किया, हे सूत गोस्वामी ये बताओ। तो ये बात चल रही है यहाँ पर भी कि पांडव लोग हस्तिनापुर में परीक्षित को स्थापित करके और मथुरा में वज्रनाथ को स्थापित करके चले गए, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया बताइए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि फिर परीक्षित महाराज ने की सहायता से हजारों जो है ना जो प्रजा है वो इंद्रप्रस्थ से मथुरा में स्थानांतरित किया। परीक्षित महाराज ने अपने इंद्रप्रस्थ की जो प्रजा है वो मथुरा में स्थापित किया। माथुरान ब्राह्मणान तत्र वानरान चा पुरातनान विज्ञाय माननीय तम तेषु स्थापितवान सुरान। तो बहुत से मथुरा मंडल के जो ब्राह्मण है वो और प्राचीन वानरों को भी जो ना सम्मान देकर के परीक्षित महाराज ने वहां बसाया मथुरा में। आप जानते हो कि वो सब मतलब प्रजा क्या है, भगवान कृष्ण के धाम में चलेंगे, किसी ने शरीर नहीं छोड़ा। जितने भी स्थान जितने भी लोग थे निवासी 84 कोस के मथुरा मंडल या ब्रज मंडल जो भी समझो, तो सब कृष्ण के धाम में चले गए, है ना। तो शरीर के सही से चले गए तो अब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए बच्चन आप चिंतित हो रहे हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ना किसी ने शरीर छोड़ा और ना कोई इस स्थान से दूसरे स्थान में गए, और दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, क्या हो गया, है ना। तो अब उन्होंने बताया कि कृष्ण की लीला में जो ना वो सब स्थित पहले भी थे, अब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं क्योंकि कृष्ण ने अपनी लीला को समेट लिया। तो अब स्थान वहां दोबारा बसाया है मथुरा मंडल को। वज्रस्तु तत्सहायेन सान्निल्यस्याप्यनुग्रहात् गोविंद गोप गोपी नाम लीलास्थानान्यनुक्रमात्। तो सांडिल्य मुनि की कृपा से वज्रनाभ ने और परीक्षित महाराज की सहायता से जितने भी लीला स्थान हैं उनके नामकरण किए और कुंड निर्मित करवाए, कुएं निर्मित कराए, सरोवर निर्मित कराए, और गोविंद हरि देवादि स्वरूपारोपणे न चा कृष्ण के भक्ति से राजे ततान चा मोदहम। गोविंद देव हरि देव इस प्रकार से श्री विग्रहों की स्थापना की है वज्रनाभ ने। शेष साई भी जो है ना उनकी स्थापना की है वज्रनाभ ने, और बलदेव जी उनकी भी स्थापना की है वज्रनाभ ने। तो और जो है ना शिवलिंग भी स्थापित किए हैं। इस प्रकार से अपने राज्य में कृष्ण भक्ति का खूब उन्होंने फैलाया और आनंदित हुए। ब्रजास्तु मुदितांस्तस्य कृष्ण कीर्तन तत्परा परमानंद संपन्ना राज्यम तस्य वितुष्टुम। अब प्रजा भी बहुत प्रसन्न है, कृष्ण के कीर्तन में सदा तत्पर रहती है प्रजा, और परम आनंद से संपन्न और राज्य भी जो ना बहुत संपन्न हुआ वज्रनाभ का। एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहात्वरां कालिंदीं मुदितां वीक्ष्य पप्रच्छुर्गत मत्सरां। अब कृष्ण की पत्नियां ही केवल दुखी हैं, बाकी सब लोग सुखी हैं। कृष्ण की पत्नियां क्यों दुखी हैं? कृष्ण के विरह में दुखी हैं। तो कालिंदी से पूछती हैं, कालिंदी तुम जो है प्रसन्न क्यों हो, हम लोग तो कृष्ण के विरह का अनुभव कर रही हैं। तो कृष्ण की पत्नियां पूछती हैं कि हम कृष्ण की पत्नियां हैं और हे शोभने तुम भी कृष्ण की पत्नी हो, फिर हम विरह के दुख में कष्ट पा रही हैं और तुम जो है प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? तो कालिंदी ने फिर उत्तर दिया कि भगवान कृष्ण आत्मा राम है, उनकी आत्मा राधिका है, तो उनके दासता के प्रभाव से हमको विरह नहीं अनुभव होता है। किसने कहा? कालिंदी ने कहा। और सब लोग, तुम लोग भी जो ना, जो श्री कृष्ण की नायिका हो तो उनके ही अंश की विस्तार हो राधा रानी के, और तुम्हारा भी जो ना नित्य उनसे संभोग है। और जो राधा है वही कृष्ण है, और कृष्ण ही राधा है, और बंसी जो है ना उनकी प्रेम रूपिका है। तो इस प्रकार से तुम्हारा कृष्ण से विरह नहीं है, लेकिन तुम इस बात को जानती नहीं हो इसलिए व्याकुल हो रही हो। तो गोपियों को भी जो ना अक्रूर जब कृष्ण को ले गए थे तो गोपियों को कृष्ण का विरह हुआ था, तो उद्धव जी ने जो है ना उस विरह को दूर किया था। तो अगर उद्धव जी से तुम्हारा मिलन हो जाए तो तुमको जो ना वो रहस्य प्राप्त हो सकता है कृष्ण की लीला का। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण की पत्नियां कहती हैं कि अब तुमने अगर हमें बताया है तो हम फिर राधा रानी की ही दासियां हम भी चाहती हैं बनना, परंतु उद्धव जी का जो है मिलन कैसे होगा ये हमें बताओ। तो फिर कालिंदी ने बताया कि उद्धव जी की साधन भूमि है बद्री धाम, बद्री धाम में रहते हैं, और फल भूमि जो है ना ब्रज भूमि है, भगवान ने उनको दी है। तो गोवर्धन गिरी के निकट सखी स्थल में जो है उद्धव जी निवास करते हैं कुसुम सरोवर में, किस लिए? गोपियों के चरणों की धूल पाने के लिए। वहां अंकुर और लताओं के रूप में है उद्धव जी। तो वहां पर अगर तुम कीर्तन उत्सव कराओ तो उद्धव जी का तुम्हें दर्शन हो सकता है, और उद्धव जी के दर्शन से तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो फिर कृष्ण की पत्नियां जो है कालिंदी को जो है धन्यवाद देकर के और वज्र और परीक्षित महाराज, वज्रनाभ और परीक्षित महाराज से बताती हैं कि ऐसा करो। तो परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न होकर के वहां पर तुरंत ही आयोजन करते हैं क्या, कृष्ण संकीर्तन उत्सव गोवर्धन के पास वृंदावन में सखी स्थल में कुसुम सरोवर में। देखा है कुसुम सरोवर? गोवर्धन के पास है। तो वहां पर जो है कीर्तन का जो ना जो है उत्सव हुआ, और उससे क्या हुआ कि जो लता घास से जो है उद्धव जी प्रकट हो गए। कैसे हैं? माला धारण किए हैं, श्याम रंग के हैं और पीतांबर धारण किए हैं, गुंजा माला धारण किए हैं, और राधा कृष्ण का जो है गुणगान कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो है उद्धव जी ने परीक्षित को गले से लगा लिया, क्योंकि परीक्षित की कृपा से ही एक कीर्तन सा हुआ। तो उद्धव जी ने परीक्षित को गले से लगा लिया। उद्धव जी कहते हैं कि राजन तुम धन्य हो, तुम कृष्ण की एकांत भक्ति से तुम नित्य पूर्ण रहते हो, और तुम जो है ना कृष्ण में निमग्न चित्त वाले हो, और श्री कृष्ण संकीर्तन उत्सव के तुम जो है अधिकारी हो। तो अब जो है ये द्वारकावासी जो कृष्ण की पत्नियां हैं ये भी धन्य हैं, जिनको कि भगवान ने अवसर दिया है ब्रज में निवास करने का। कृष्ण की जो द्वारका की पत्नियां हैं कुछ तो अर्जुन के साथ में थीं, जो कि वो थी स्वर्ग की अप्सराएं थीं, तो उनका तो जो है अपहरण हुआ गोपों के द्वारा, हालांकि वही कृष्ण के रूप थे वो, तो वो जो है ना अपने स्थान में चलेंगे। लेकिन जो कृष्ण की पत्नियां यहाँ ब्रज में निवास कर रही हैं ये बहुत जो है भाग्यशाली हैं। और अब जो वज्रनाभ हैं ये कौन है? ये श्री कृष्ण के दाहिने चरण में इनका स्थान है वज्रनाभ का। और जो कृष्ण की पत्नियां हैं ये जो है ना राधा रानी की प्रभा का अंत है। तो अब मैं क्या करूंगा, श्रीमद् भागवत का जो है पाठ करके इन सब लोगों को कृष्ण की लीला में प्रवेश कराऊंगा। उद्धव जी ऐसा बताते हैं और श्रीमद् भागवत उनको बृहस्पति के द्वारा प्राप्त हुई है। तो फिर उन्होंने बताया कि ये श्रीमद् भागवत जो है बृहस्पति से कैसे प्राप्त हुई है। भगवान शेष जी ने जो है सांख्यन ऋषि को श्रीमद् भागवत दिया और सांख्यन से बृहस्पति को प्राप्त हुआ और बृहस्पति से श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ उद्धव जी को। भगवान जो है ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों को श्रीमद् भागवत प्रदान करते हैं। तो जब ब्रह्मा जी को सृष्टि के उत्पत्ति के कार्य में लगाया और विष्णु को पारण के कार्य में और शिव जी को संहार के कार्य में लगाया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु ये पापी जो रजोगुण है ये मुझको बाधा ना डाले, ऐसी कृपा करो मैं सृष्टि के कार्य में जब लगूंगा तो रजोगुण मुझे बाधा डालेगा। तो भगवान ने श्रीमद् भागवत उनको प्रदान किया ब्रह्मा जी को और इन्होंने सात आवरणों को भंग करने के लिए सप्ताह भागवत सप्ताह का पारायण किया ब्रह्मा जी ने। सात अज्ञान के आवरण हैं उनको दूर करने के लिए। फिर भगवान विष्णु ने भी जो ना उनसे बताया कि मैं प्रजा का पालन करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा विभिन्न अवतारों के द्वारा ना, और जो भोगों की कामना करते हैं उनको यज्ञ आदि का फल प्रदान करूंगा और जो मोक्ष की कामना करते हैं उनको पांच प्रकार की मुक्ति भी दूंगा, परंतु जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं उनका मैं कैसे पालन करूंगा। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जो मुक्ति भी नहीं पाना चाहते हैं उनका मैं कैसे पालन करूंगा, अपना भी कैसे पालन करूंगा और लक्ष्मी जी का भी कैसे पालन करूंगा, ये बताइए। तो फिर उनको भी श्रीमद् भागवत प्रदान किया भगवान ने। तो फिर भगवान जो है विष्णु हर महीने मतलब एक एक महीने में श्रीमद् भागवत का पारण करते हैं पूरा। जब भगवान विष्णु सुनाते हैं भागवत लक्ष्मी जी श्रवण करती हैं तो एक महीने में भागवत समाप्त होती है। जब लक्ष्मी स्वयं वक्ता बनती हैं और भगवान विष्णु श्रवण करते हैं तो दो महीने में श्रीमद् भागवत का रसा स्वतन होता है। इसका कारण यह है कि विष्णु को तो पालन का अधिकार है लेकिन लक्ष्मी जी निश्चिंत मन वाली हैं, उनमें कोई चिंता नहीं है। इसलिए जब लक्ष्मी जी श्रीमद् भागवत सुनाती हैं तो भागवत का आस्वादन बहुत प्रकट होता है। अब शिव जी ने भी जो है संहार के कार्य में जो है बाधा समझ करके भगवान से कहा कि मैं चार प्रकार की मुक्त जो है ना संहार करूंगा, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और प्राकृत प्रलय, तीन प्रकार का, हाँ तीन प्रकार का प्रलय मैं करूंगा, परंतु आत्यंतिक प्रलय जो है करने की मेरे पास शक्ति नहीं है, तो अब मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकार की कृपा करो। तो भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत उनको प्रदान की जो कि एक साल में शिव जी पूरा करते हैं श्रीमद् भागवत और उनको आत्यंतिक प्रलय करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो फिर उद्धव जी कहते हैं कि अब मैं वैष्णवी रीति से एक महीने में श्रीमद् भागवत का आस्वादन कराऊंगा इन सब जो यहाँ के निवासी हैं इनको, और इस श्रीमद् भागवत के कारण मैं कृष्ण का सखा बना और कृष्ण जो है ना मुझे फिर नियुक्त किया अपनी प्रेयसी गोपियों के पास जाने के लिए, और श्रीमद् भागवत का संदेश जब मेरे मुख से व्रती गोपियों ने सुना तो वे विरह से मुक्त हो गईं। उस समय मैं भी रहस्य नहीं समझा श्रीमद् भागवत का, लेकिन गोपियां विरह से मुक्त हो गईं। परंतु जब भगवान कृष्ण स्वयं जा रहे हैं अपने धाम परम धाम में तब श्रीमद् भागवत का रहस्य कृष्ण स्वयं मुझे प्रदान किया, तो उस जो है ना के प्रभाव से अब मैं यहाँ नारद कुंड में निवास करता हूँ अपनी इच्छा से। तो कृष्ण का प्रकाश जो ना भक्तों को श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है। तो अब मैं जो है यहां श्रीमद् भागवत का जो है प्रवचन करूंगा। और परीक्षित कहते हैं कि अब मुझे आप आदेश दीजिए कि मैं आपकी क्या सहायता करूं, आप श्रीमद् भागवत का जब प्रवचन करेंगे। तो उद्धव जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस पृथ्वी को त्याग दिया है, तब से बलवान कलयुग जो है ना विघ्न करेगा कथा में, इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ, कलयुग का निग्रह करो और मैं एक महीने जो ना के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन करूंगा। तो इस प्रकार से जो है ना परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं कलयुग का निग्रह करूंगा आपके आदेश से, परंतु श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? फिर मुझे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कैसे होगी? तो उद्धव जी कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के शास्त्र में तुम्हारा तो मुख्य अधिकार है, क्योंकि तुम्हारे ही कारण इतने लोग श्रीमद् भागवत श्रवण करेंगे, तो तुम्हारा तो सबसे ज्यादा अधिकार है। तो तुम्हारी कृपा से मनुष्य जो है भारत में श्रीमद् भागवत प्राप्त करेंगे और सुख प्राप्त करेंगे। तो जो सुखदेव गोस्वामी हैं, ये भगवान कृष्ण के जो है ना साक्षात क्या हैं, साक्षात रूप हैं भगवान कृष्ण के, तो ये श्रीमद् भागवत जो है ना तुमको प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और फिर वही तुम्हारा जो संवाद है सुखदेव गोस्वामी के साथ में, वही भारत में श्रीमद् भागवत के नाम से विख्यात होगा। इसलिए तुम अब कलयुग का निग्रह करो। किसने कहा? उद्धव जी ने कहा परीक्षित से। तो फिर बजनाभ ने क्या किया? बजनाभ ने अपने पुत्र प्रतिभाओं को राज्य में स्थापित कर दिया। क्यों? क्योंकि अब भागवत श्रवण करना है और कृष्ण की लीला में प्रवेश करना है ना, अब और कोई कारण नहीं रह गया बजनाभ का। उन्होंने प्रतिभाओं को राज्य में स्थापित कर दिया। वज्रस्तु निज राज्य सम प्रतिभाहुं विधाय च तत्रैव मातृभिः साकं तत्स्वभाग्यवताशयन्। अथ वृंदावने मासं गोवर्धन समीपतः श्रीमद् भागवता स्वादस्तोद्धवेन प्रवर्तितः। तो वृंदावन में जो है ना गोवर्धन के समीप एक महीने के लिए श्रीमद् भागवत का आस्वादन हुआ, उद्धव जी ने उसका प्रवचन किया। तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सच्चिदानंद रूपिणी प्रत्यकाशे हरेर लीला सर्वतः कृष्ण एव च। तो समय जो ना भगवान की लीला जो सच्चिदानंद रूपिणी लीला है वो सब और प्रकाशित होने लगी। आत्मानं च तदन्तस्थं सर्वेपि दन्द्रसुसना वज्रस्तु दक्षिणे दृष्ट्वा कृष्ण पादे सरोरुहे। तो सबने जो ना देखा अपने को कृष्ण की लीला में। अब वो इस भौतिक जगत से वो लोग भी बिल्कुल अलग हो गए, कृष्ण की लीला में सब अपने को देखने लगे। और बज्रनाभ ने क्या देखा? भगवान कृष्ण के चरण कमल में दाहिने चरण में अपना स्थान देखा। स्वात्मानम कृष्ण मैधुर्यान मुक्तस्तन भव्य शोभत तासतन मातरा कृष्ण रासरात्रि प्रकाशिनी चंद्र कला प्रभा रूपम आत्मानम वीक्ष विस्मिता स्वप्रेष्ठ विरह व्याधि विमुक्ता स्वपदम यजुः। तो कृष्ण के विरह से वज्रनाभ भी मुक्त हो गए और उनकी जो माताएं हैं यानी कृष्ण की पत्नियां हैं, तो वो उन्होंने क्या देखा? भगवान की रास लीला में जो है ना वे भी एक कला के रूप में है। तो बड़ी विस्मित हुई और अब इस भौतिक जगत से वो भी अंतर्धान हो गई, कृष्ण की लीला में प्रविष्ट कर गए, है ना। तो किसी ने भी शरीर नहीं छोड़ा, वहां के जितने भी निवासी थे वो सब कृष्ण की लीला में प्रवेश हो गए। अब भौतिक दृष्टि से ओझल सब के सब हो गए। गोवर्धन निकुंजेशु गोसु वृंदावनादिषु नित्यं कृष्ण नमोदन्ते दृश्यन्ते प्रेम तत्परे। तो गोवर्धन के निकुंजों में और वृंदावन के स्थान में जो है कृष्ण के साथ में नित्य प्रसन्न रहते हैं और जो प्रेम में तत्पर हैं उनको कभी कभी दिखाई पड़ती है ये लीला। ये जो लीला है कृष्ण की है नित्य लीला, तो वो जो प्रेम में तत्पर हैं उनको भी कभी कभी ही दिखाई पड़ती, हमेशा नहीं दिखाई पड़ती है। तो शुद्ध गोस्वामी कहते हैं ये ताम भगवत प्राप्ति सुनया चापी कीर्तये तस्व भगवत प्राप्ति दुख जायते। तो ये जो भगवत प्राप्ति की जो घटना है इसको जो श्रवण करे या जो सुनाएगा उसको भी भगवत प्राप्ति होगी और जितने दुख हैं उन सब दूर हो जाएंगे। तो ये जो कथा है स्कंद पुराण की है, वैष्णव खंड में परीक्षित उद्धव संवाद में जो है श्रीमद् भागवत का महात्म्य बतलाया गया है। तो ये मैंने पढ़ के सुनाया है क्योंकि श्लोक में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि मथुरा का राजा बजनाभ को नियुक्त करके युधिष्ठिर महाराज अन्य पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ कहाँ चले गए, महाप्रयाग में चले गए। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि जो भील भगवान की पत्नियों को छीन के ले गए थे उनका क्या हुआ? वास्तव में वो भील नहीं थे, भगवान कृष्ण ही थे। क्योंकि अष्टावक्र मुनि ने श्राप दिया था स्वर्ग की अप्सराओं को, अष्टावक्र मुनि के जो है ना कुरूप शरीर को देख करके वो हंसी थी, इसलिए उन्होंने श्राप दिया था कि कुरूप जो ग्वाले हैं वो तुम्हारा अपहरण करेंगे। तो जब उन्होंने फिर उनसे क्षमा याचना की, उनको प्रसन्न किया, तो प्रसन्न होकर के वो बोले कि मेरा श्राप तो जो है ना बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, क्या? कि तुम लोग कृष्ण की पत्नियां बनो। तो कृष्ण की पत्नियां बनी। अब कृष्ण की पत्नियों का हरण कौन कर सकता है कृष्ण के सिवा, है ना? तो अष्टावक्र मुनि के श्राप को पूरा करने के लिए कृष्ण ही जो है ना कुरूप भीलों के रूप में आए और अपनी पत्नियों का हरण किया, है ना? तो वो जो है ना भगवान की ही लीला है और कोई नहीं है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न कि कृष्ण का जो वंश है वो फिर लुप्त हो गया है, चल रहा? हाँ, कुछ राजाओं के नाम बताए हैं सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में, उसके बाद फिर लुप्त हो गया ये वंश। तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, उनके पुत्र बजनाभ, उनके पुत्र प्रतिबाहु और उनके पुत्र सुबाहु, इस प्रकार से कुछ और राजा हैं और उसके बाद फिर वंश लुप्त हो गया। इन चंद्रवंशी राजाओं में एक है राजा मरुत, नहीं मरुत नहीं, एक राजा है देवापी। तो वे जो ना तपस्या कर रहे हैं कलाप ग्राम में और चंद्रवंश का जो ना फिर आगे फिर वो विस्तार करेंगे। कब? कलयुग के अंत में जब सतयुग आएगा तो चंद्रवंश का विस्तार करेंगे, वो विवाह करेंगे। अभी उन्होंने विवाह नहीं किया है, शांतनु के भाई हैं देवापी, है ना? तो इस प्रकार से चंद्रवंश नष्ट नहीं होता है, कलयुग में जरूर नष्ट हो जाता है, लेकिन सतयुग में फिर उनका ही कोई राजा जो है ना विवाहित होकर के फिर से वंश को आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार सूर्य वंश के राजा मरुत हैं, तो वो भी जो ना सतयुग में फिर विवाह करेंगे और फिर सूर्य वंश को आगे बढ़ाएंगे। बजनाभ, इनका प्रश्न कि बजनाभ ने जो विग्रह उनकी स्थापना की वो क्या दिखाई देते हैं? हाँ, वो दिखाई देते हैं, गोविंद देव हैं, हरिदेव हैं, केशव देव हैं, है ना, और बल देव हैं। इस प्रकार से बजनाभ के स्थापित विग्रह हैं, वहां पर उनके दर्शन होते हैं। और शेषशाही हैं वो भी बजनाभ के स्थापित किए हुए हैं। और कोई प्रश्न? इनका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण की प्रकट और अप्रकट लीलाएं पूर्ण रूप से समान है या अलग अलग हैं? प्रकट लीला का मतलब होता है कि जब वैवस्वत मन्वंतर के 28वें द्वापर में जब भगवान अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं तो भौतिक दृष्टि से वो दिखाई पड़ती हैं, हमारी भौतिक आंखों के सामने भी वो दिखाई पड़ते हैं, चाहे कोई पहचान पाए या ना पहचान पाए, लेकिन वो प्रकट होती हैं इस भौतिक जगत में, है ना? तो कुछ समय के लिए प्रकट होती हैं, फिर से वो अप्रकट हो जाती हैं, और वैसे कोई अंतर नहीं है। इनका प्रश्न अज्ञान के साथ आवरण, जो जीवात्मा है जो ढका हुआ है, है ना, भौतिक पदार्थ के अलग अलग लेयर्स आवरण, भौतिक पदार्थ के आवरण है। तो सात आवरण जो है ना, आप यही समझ सकते हो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है ना, मन, बुद्धि और अहंकार, वैसे आठ हो जाते हैं। बुद्धि अहंकार अगर इकट्ठा मान लें तो इस प्रकार से सात आवरण हो जाते हैं। तो इनको पार करना है अपने स्वरूप को जानने के लिए। इनका प्रश्न है कि ग्रहण के समय मंदिर क्यों बंद किया जाता है। ग्रहण के समय जो है भोजन की सामग्री भी जो है ढक करके रखी जाती है और मंदिर बंद रखा जाता है। ये माना जाता है कि वायुमंडल बहुत दूषित होता है उस समय, ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का मतलब ये होता है कि जो राहु है तो वो जो है ना सूर्य को ग्रस्त रहा है या चंद्रमा को ग्रस्त रहा है, है ना, क्योंकि वो भी एक लोक बन गया राहु भी, क्योंकि इसने अमृत भी लिया था। अमृत का जब बंटवारा हो रहा था तो भगवान मोहिनी के रूप में अमृत देवताओं को पिला रहे थे और असुरों को धोखा दे रहे थे। तो उनमें से एक असुर था राहु, वो उसने समझ लिया कि ये मोहिनी जो है ना असुरों को धोखा दे रही है, तो अमृत पीने के लिए वो जो है देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तो सूर्य चंद्रमा के बीच में वो बैठा, तो सूर्य चंद्रमा दोनों ने भगवान को सूचना दी कि ये जो है ना असुर है, लेकिन तब तक उसने जो है ना मुंह में अमृत पी लिया था। तो भगवान ने तुरंत चक्र से उसका सिर काट दिया। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार वो अमृत जो है ना उसके गले के नीचे नहीं उतरा था, इसलिए उसका शरीर तो मर गया, लेकिन चूंकि मुंह में अमृत चला गया था इसलिए उसका जो मुख है वो अमर हो गया। तो वो जो है ना एक बहुत बड़ा ग्रह बन गया राहु। तो वो बहुत बड़ा ग्रह है, तो वो जो है ना जब सूर्य के पास आता है तो वो बदला लेने के लिए कि तुमने जो है ना मेरी शिकायत की भगवान से, हैं? अच्छा तुमने शिकायत की मेरी भगवान से। तो वो सूर्य के पास आता है खाने के लिए, चंद्रमा के पास आता है खाने के लिए, हैं? तो श्रीमद् भागवत तो ये कहती है कि भगवान का चक्र चारों तरफ रहता है, मंडराता रहता है सूर्य के सामने, चंद्रमा के सामने। जब वो आता है तो वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन जितनी देर तक वो सूर्य चंद्रमा के निकट रहता है तो वो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन कुछ और भी शास्त्र हैं जिनमें बताया जाता है कि वो बहुत बड़ा है राहु सूर्य की तुलना में, चंद्रमा की तुलना में। तो अपने मुंह में वो जो है ना रखता है सूर्य को, चंद्रमा को, तो अपने दांतों से काटता है तो काफी खून की धारा निकलती है सूर्य की और चंद्रमा की, काफी खून की धारा निकलती है। और राहु जो है ना उनको अपना भोजन बनाता है, सूर्य चंद्रमा राहु के भोजन है। तो उस समय जो है ना वायुमंडल में सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणें उस खून की धारा से बहुत दूषित रहती हैं। इस प्रकार से जो वातावरण है वो बहुत अशुद्ध होता है, इसलिए भोजन जो है ना बनाया जाए उस समय, और भोजन की चीजें ना रखी जाएं और भगवान के मंदिर भी बंद रखे जाएं। तो इसमें यही जो है मतलब एक विचार है कि वो जो दूषित किरणें हैं तो उनसे जो है ना बचाया जाए हर चीज को। इनका प्रश्न है कि चित्त और मन में क्या अंतर है। चित्त का मतलब है चेतना, और जो मन है तो एक ऐसी वस्तु जो बहुत चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्ण है। मन में जो है ना क्या है कि संकल्प और विकल्प होते रहते हैं। मन जो है ना क्या है, किसी चीज को स्वीकार करता है, किसी का तिरस्कार करता है, राग द्वेष बना रहता है, कोई चीज अच्छी है कोई चीज खराब है। मन जो है ना हमेशा इस प्रकार से चिंतन करता रहता है। और जो चित्त है वो चेतना कहलाती है। चेतना ये पूरे शरीर में व्याप्त है, आत्मा का जो है ना एक ये लक्षण है चेतना, आत्मा की एक शक्ति है चेतना। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चेतना भी चली जाती है शरीर से, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य का प्रकाश भी चला जाता है। लेकिन कुछ अंतर है, सूर्य अस्त हो जाता है लेकिन सूर्य का प्रकाश कुछ समय तक रहता है, है ना। उसी प्रकार से शरीर से चेतना, शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो चेतना भी धीरे धीरे चली जाती है, आप समझे। तो ऐसा होता है, जैसे कभी आपने देखा कि केंचुआ का जो है ना शरीर काट दिया जाता है, तो दो केंचुए दिखाई देते हैं, दो केंचुए हो गए हैं, दोनों चल रहे हैं, है ना। आत्मा तो एक है, एक टुकड़े में है आत्मा है, लेकिन दूसरा टुकड़ा भी चल रहा है, तो क्यों? क्योंकि चेतना उसमें अभी है, लेकिन धीरे धीरे एक टुकड़े से चेतना समाप्त हो जाएगी, एक टुकड़ा जिंदा रहेगा जिसमें आत्मा है, तो दूसरा टुकड़ा जो है ना मर जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा के दो टुकड़े हो गए हों, लेकिन आत्मा के दो टुकड़े नहीं हुए, लेकिन चेतना जरूर विभक्त हो गई कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वो चेतना जो ना उसमें से निकल जाएंगे, क्योंकि आत्मा नहीं है ना। छिपकली को भी आप देखते हैं कि पूंछ कट जाती है कभी छिपकली की, तो पूंछ उछलती रहती है, तो उसमें आत्मा नहीं है लेकिन चेतना है ना। लेकिन जिस हिस्से में आत्मा है तो वो तो जिंदा रहती है छिपकली, लेकिन पूंछ में आत्मा नहीं है, लेकिन चेतना जो है ना कुछ समय रहती है तो वो उछलती रहती है, फिर वो समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? इस श्लोक में लिखा है अग्निन अपिबत ईश्वरः, अग्नियों को पी लिया युधिष्ठिर महाराज ने, इसका क्या मतलब है? बद्रनाभ को सूरसेन का पति बना करके, सूरसेन देश है, सूरसेन देश कहलाता है, तो सूरसेन का पति बनाया, मथुरा मंडल का पति बनाया राजा, और अग्नियों को पी गए। युधिष्ठिर महाराज ने अग्नियों को पी लिया, इसका मतलब है गृहस्थ जीवन में जो है ना जो होम किए जाते हैं, है ना, तो अग्निहोत्र जो किए जाते हैं, तो उनको जो है उन्होंने छोड़ दिया। ईश्वर का मतलब समर्थ, वो इतने समर्थ हैं, इतने विरक्त हैं कि उन्होंने जो है अब गृहस्थ जीवन के जितने कर्तव्य हैं उनको त्याग दिया, है ना, और वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्षार्थे के